Good evening, listeners. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444, 2342-1050, and the third number is 2331-0464. Please prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
Dhanyawad Sonu. Namaskar, karobari khabron ke saath hum ek bar phir hazir hain Market Mantra ke taza ank ke saath, aur aap sabhi shrotaon ka bahut swagat hai. Aaj ravivar hai aur ravivar ki tarah आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
वेलकम आशुतोष.
बहुत धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ हैं सोनू सूद.
द टॉप स्टोरीज. फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 44,000 करोड़ रुपीज इनटू द इंडियन कैपिटल मार्केट सो फार इन जुलाई. यूनियन बजट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड यूएस जीडीपी नंबर्स टू ड्राइव स्टॉक मार्केट्स नेक्स्ट वीक. And global gold prices rise for the fourth straight week. Experts feel price may touch $3,000 level by the end of this year.
विदेशी निवेशकों द्वारा जुलाई में भारतीय पूंजी बाजार में किया गया 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश. केंद्रीय बजट, कंपनियों के परिणाम के आंकड़े और अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े अगले सप्ताह करेंगे शेयर बाजार की दिशा निर्धारित. और वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें लगातार चौथे हफ्ते बढ़ी. विशेषज्ञों का मानना कि साल के अंत तक कीमत छू सकती है $3,000 का आंकड़ा.
The union budget, corporate results and US GDP data will be the major factors to drive stock market sentiment next week. The benchmark indices lost about 1% on Friday to end the week almost flat. Investors will be looking for cues from the much-awaited first union budget of the NDA Government 3.0, scheduled to be presented on July 23. The markets will also focus on ongoing corporate earnings season, as nearly 300 companies will announce their quarterly earnings next week, including key names like Bajaj Finance, Hindustan Unilever, Interglobe Aviation, Axis Bank, Bajaj Finserv, L&T, SBI Life, Nestle India, Tech Mahindra, Cipla and ICICI Bank. On the global front, the market will keenly watch the US GDP growth numbers for the June quarter. The US economy is expected to grow at better numbers during the quarter compared to the 1.4% growth reported in the March quarter. Besides that, total 8 IPOs will hit Dalal Street, while 7 companies will get listed on the bourses next week. And now we have our first caller for the day with us, Kaushik from Kolkata. Kaushik ji, warm welcome. Please ask your question.
Warm welcome to all, to you all, the panelists of Market Mantra. I'm a regular listener here.
Yeah.
And I do rely on your comments. Now, I'll take a little bit more time just to, because regarding the option selling and buying, SEBI is going to take some actions, or rather propose some things. And since today we are going to discuss about the mutual funds, actually we all know that the big players do profit on options, like when they go and sell a huge quantity, and before that they buy put options, and after that they make a huge profit and then buy back. So that's why the spikes are occurring in the market. So SEBI is good on taking all those actions, because in a zero-sum game, we lose money. The option buyers lose money. I, being an options trader, I make some profit a little bit, but I do. But still, is it not SEBI's authority, SEBI's duty to control those big players, those who make profit out of the retailers this way?
Okay, Ashutosh.
Can you please highlight?
See, although I'm not an authority on this subject, but taking a very broad view of this, SEBI has been a very proactive regulator in fixing any gaps, anything that works to the detriment of any investor segment. SEBI has been a very proactive regulator, as we've seen, to plug those gaps. It has very advanced surveillance systems through which it tracks and monitors market activity and does its job diligently. Now, there would be instances when, somebody benefits. I mean, market itself is a zero-sum game in a way. Somebody buys, somebody sells, and somebody profits at the loss of somebody else. From a retail investor's perspective, my broad opinion is that option trading is something best left, untouched, or it's rather an avoidable segment for retail investors. They should concentrate on products which are for their long-term benefit, things like mutual funds, which have given fantastic returns without them having to do much. And I think they are very well regulated, very transparent products which do not, hamper the interests of retail investors in any way. And I think they should focus on those products.
So, Ashutoshji, the first union budget of the NDA government 3.0 is scheduled to be presented on coming Tuesday. So what are the expectations of stock market investors from the budget?
Well, different people would have, their wish lists ready, and there have been, lots of commentaries that we see in the dailies every day. But broadly, given the track record of this government over the last, two governments that they've formed, one should not expect a very populist budget. This government has shown the steel not to get carried away and come out with a very populist budget at the expense of fiscal discipline. In fact, they've shown a lot of fiscal prudence in the past budgets, and that is something which has got accolades from the industry. And I don't think one should expect anything different from that. Yes, of course, the middle class have always their expectations on some relaxations on taxation, some enhanced threshold taxation limits, perhaps some increment to the savings limits that they have. So what all the finance minister provides on these accounts, one should look out for, but do not expect a very populist budget, in my opinion.
Jee. हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से आरएस धैया. आरएस धैया जी नमस्कार, सवाल पूछिए.
नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, सुबर्सिज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड रिटर्निंग का रिटर्न हायर इट मॉडरेट की एंड प्लीज
धैया जी अपना सवाल एक
एक्सक्यूज मी मिस्टर धैया, वी आर नॉट बीइंग एबल टू हियर योर वॉइस क्लियरली. इफ यू कैन जस्ट मूव अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द माइक देन प्रोबेबली द क्लैरिटी विल बी बेटर. या प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन.
माय क्वेश्चन इज
या
दैट पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड इज द मोर रिस्क इन द पीएमएस एंड रिटर्न इज हायर. And if an investor wants to invest, should he invest now or can the market cool down? And is it safe to invest in PMS security wise? And is the return in PMS more than mutual fund? And what are the three top performing PMS schemes in ranking and performance?
Okay. Portfolio management system.
Right. So one of the fundamental differences that, of course, PMS, the threshold amount itself is rupees 50 lakh. So you can enter into a PMS if you have a base capital of 50 lakh or more to provide to a PMS provider to manage on your behalf. But more broadly, I would say that some PMS do claim to have a superior track record of performance. But to be honest, the regulation or the transparency of PMS does not match up to mutual funds. What is the stated claimed performance, how uniformly they have been
been able to provide that across different PMS portfolios and different PMS investors on whose behalf they manage the money. It is all, the jury is out on that. In contrast, mutual fund performance is highly regulated, highly transparent, you can be sure of what the numbers are being reported is actually what every single mutual fund investor would get. So on multiple counts, I would say that mutual funds are a superior product for, retail investors, even HNIs, and I would say that one should stick to mutual funds. Again, your next question about, is it a good time to invest or one should wait for the markets to cool down? Well, again, people who have been waiting for the markets to cool down have been waiting for the last 1 year and, the markets have not cooled down. And, markets can continue to remain at elevated levels for the next several months to several years. Who knows? So the best way, as is often recommended, is to invest your money systematically, even if you have a lump sum amount, spread it across several months and keep investing through the ups and downs of the market. Hopefully, over the long term, you will not be disappointed.
जी आशुतोष जी और जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी. जितेंद्र सवाल पूछिए अपना.
हाँ सर, आपके जैसे आपके अनुमानित आने वाले बजट में क्या चीज पे सरकार जैसे बजट कम कर सकती है, पहला तो ये क्वेश्चन है. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी क्या भविष्य है, जैसे अभी एनएफओ एक आ रहा है.
देखिए, इस पर हमने अभी चर्चा की. जहां तक बजट की बात है तो एक दिन आप और इंतजार कीजिए, परसों सारी चीजें आपके सामने होंगी. लेकिन ब्रॉडली जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट जो लोगों को रिझाने के लिए बहुत ज्यादा फिस्कल बर्डन अपने ऊपर लेना, ऐसा इस सरकार ने कभी काम किया नहीं है. सरकार ने काफी सूझबूझ के साथ अभी तक बजट पेश किए हैं, काफी बैलेंस्ड बजट पेश किए हैं और मुझे उम्मीद है कि वैसा ही रहेगा. ग्रोथ पे इस सरकार का काफी फोकस रहता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जैसे जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट, जो भी सरकार इस बार भी बजट में प्रावधान लाएगी, मुझे उम्मीद है कि जरूर ये एक कॉन्टिन्यूटी हमें दिखेगी जो कि हमने पिछले 10 साल में देखी है. तो मैं आशा करता हूं कि उन्हीं लाइन्स पर बजट होगा जिस टाइप से अभी तक इस सरकार ने प्रेजेंट किए हैं. जहां तक मैन्युफैक्चरिंग फंड्स की बात है, पिछले एक साल में अच्छा प्रदर्शन रहा है और कई इस टाइप के फंड नए लॉन्च भी हुए हैं. लेकिन मेरा मानना है कि एक आम निवेशक को एक सेक्टर या थीमेटिक फंड से को अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको बहुत ही ज्यादा उस पर कुछ कन्विक्शन है तो कुछ 5-7% अपनी एलोकेशन उसमें रखिए, वरना आप इनसे बचें. और मेन स्ट्रीम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जैसे कि मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, वैल्यू फंड्स, इन्हीं में अपना निवेश रखिए.
The next caller is from Delhi, Mr. Vainath. I'm not sure about the name. Please, if I pronounced it wrong, please correct me. So, welcome to the show, sir, and please ask your question.
Namaskar, sir. Namaskar, madam.
Ji, namaskar.
My question is that government employment ke liye kya building allowed hai?
Please, can you repeat it?
Inka sawal hai ki government employees ke liye kya
building allowed hai? Government employee ke liye building allowed hai?
देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कोई रुकावट या कोई बंदिश शायद नहीं होनी चाहिए. लेकिन ये आप अपनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन शायद रूल्स रेफर करते हो. बेहतर होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से ही इसकी जानकारी प्राप्त करें. और आपने वर्ड यूज किया ट्रेडिंग, मैं आपको जरूर कहूंगा ट्रेडिंग करने से आप परहेज करें, आप निवेशक बनिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स खरीद बेच रहे हैं, इंट्राडे आप खरीद बेच रहे हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं. उससे आप जरूर बचें, भले ही आपको वो चाहे अलाउड है या नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग से बचे, निवेशक बने.
सो इट कैन लीड टू लॉसेज ऑल्सो, ह्यूज लॉसेज.
एब्सोल्युटली,
बिना जाने बिना परखे उसको जो है करना सही नहीं है. दिल्ली से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं. राजेंद्र जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
म्यूचुअल फंड से इनकम किस लिमिट तक टैक्स फ्री है? अगर यदि ऐसा है तो वो पैसा कितने साल तक म्यूचुअल फंड में रखना है?
देखिए, अगर आप डेट फंड की बात करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा आपकी इनकम में जुड़ता है और जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट मानिए टैक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह टैक्स होता है आपका. वो आपको जो भी आप डेट फंड खरीदते बेचते हैं उससे जो आपको कैपिटल गेन होता है तो वो आपकी उस साल की इनकम, जिस साल आप बेचेंगे उस साल की इनकम में जुड़ जाएगा और आपके स्लैब सिस्टम की ही तरह वो टैक्स होगा. इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में अगर आप एक साल के अंदर खरीदकर फंड को एक साल के अंदर ही बेच देते हैं तो 15% का जो आपको मुनाफा होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा. और अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो 1 लाख तक का कैपिटल गेन आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर जो भी कैपिटल गेन टैक्स होगा, कैपिटल गेन होगा, उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा।
जी आशुतोष जी, पिछले साल दिसंबर में हमने 2023 में देखा कि म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है वो 50 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस किया और अब तक वो 60 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है, लगभग 20% से ज्यादा की वृद्धि है। तो जो आम निवेशक है, मतलब ये बिल्कुल जाहिर है कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो किस तरीके से एक जो नया निवेशक है वो जिसको मार्केट के बारे में अंदाजा नहीं है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे म्यूचुअल फंड्स में और कौन से फंड्स में पहले जाए इन्वेस्ट करने के लिए?
देखिए पहले तो ये एक अच्छा ट्रेंड बिल्डअप में है कि आम निवेशक दे आर वेकिंग अप टू द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली आम निवेशक हिंदुस्तान में फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स रहे हैं, अब इंक्रीजिंगली वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख रहे हैं, ये काफी अच्छा ट्रेंड है।
विच द आरबीआई गवर्नर हैज ऑल्सो पॉइंटेड आउट।
एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस इज अ गुड ट्रेंड, दीज आर एक्चुअली वेरी वेल सुटेड प्रोडक्ट्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। शुरुआती निवेशकों को 2-3 चीजें, एक तो लमसम भी अगर आपके पास है, एक साथ अपना पैसा ना डालें, उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें मंथ ऑन मंथ। SIP जिसे हम कहते हैं, तकरीबन 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा पर मंथ SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश हो रहा है, ये काफी अच्छा ट्रेंड है और ये बिल्डअप में है। अगर आपको फंड में दिक्कत है, आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूंगा कि अगर आपको थोड़े मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा घबराहट होती है तो आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरू करिए। इसमें आपका कुछ पैसा डेट में निवेशित रहता है, कुछ पैसा इक्विटी में निवेशित रहता है, जब भी मार्केट गिरती है फंड उसे मार्केट से थोड़ा कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको देते हैं। मेजॉरिटी नए निवेशकों के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मेरे लिहाज में काफी सुटेबल प्रोडक्ट हैं। अगर आप ऑल इक्विटी ही चाहते हैं लेकिन आपको चॉइस करने में दिक्कत है कि कहां से शुरू करें, कौन सा फंड अच्छा है, आप सिंपली निफ्टी का एक इंडेक्स फंड लें और उसमें अपना SIP शुरू करें और उसको फिर लगातार बरकरार रहें, मार्केट के उतार चढ़ाव पर बरकरार रहें, ये जरूरी है। अगर यहां से मार्केट 10-20% गिर जाती है तो आप घबराकर अपना पैसा निकालें नहीं या अपना SIP बंद ना करें, तो आप 2-3 साल तक आप ये प्रक्रिया चालू रखिए, आपको मार्केट की समझ होगी, आपको जो उतार चढ़ाव है उनकी समझ होगी, उनसे आपकी घबराहट कम होगी और उसके बाद अपना और लंबे समय का निवेश प्लान करें।
दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग सर, आई एम सतीश चंद्रा। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने मास्टर शेयर, मास्टर गेन और मास्टर प्लस में 20-25 साल पहले कुछ पैसा लगाया था, तो उसका अभी कुछ आधा पता नहीं है कि वो कहाँ गए और ना उनका कोई लेटर आता है ना कुछ डिविडेंड आता है, तो ये कहाँ से पता लगाया जाए कि ये उनका क्या स्टेटस है? थैंक यू
जी। ये आपकी काफी पुराने, करीब 20-25 से ज्यादा साल पुरानी आपके निवेश हैं UTI के, ये सारे ही फंड किसी ना किसी UTI के दूसरे फंड में मर्ज हो गए हैं, तो ये पैसा अभी भी आपका निवेशित होगा और ये पैसा बढ़ रहा होगा। और अगर आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 25 साल की जो इस पे ग्रोथ है एम्बेडेड है, आप काफी प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे जब आपको पता चलेगा कि ये आज के डेट में इनकी वैल्यू कितनी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप UTI के इन्वेस्टर सर्विसेज में कॉन्टैक्ट करिए, UTI की वेबसाइट पे आपको उनके नंबर मिलेंगे, वो आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, आपका पैसा आपको, आप ये जान पाएंगे कि ये आज की डेट में इस फंड का नाम क्या है और उसमें आपकी वैल्यू क्या है। आपसे वो 2-3 डिटेल लेंगे, आपका फोलियो नंबर अगर आपके पास होगा वो उनको दीजिए जानकारी, और कौन सा फंड है ये जानकारी दीजिए, वो आपकी मदद जरूर कर पाएंगे।
रिसेंट यू नो इवेंट विच हैपेंड, एनी इफेक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ऑन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वॉज ऑब्जर्व, एनी सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन द इंडियन म्यूचुअल फंड सेक्टर?
See, there was disruption in a very wide, kind of companies. Multiple sectors, multiple companies were impacted, and any impact was of the kind that any other company would have had on their operations. Everybody who was using Microsoft-based platforms significantly, whatever operational disruption that they witnessed, could have impacted AMCs as well. But beyond that, any specific,
no long term impact.
Not really.
Okay. Our next caller is Atanu Shah from Kolkata. Welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Good evening, ma'am.
Good evening,
everybody. My question is, what methodology they do follow to purchase and to adding or minus, mainly those who are fund managers? Thank you.
कुछ उनका फोमो से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था।
आई थिंक रिगार्डिंग द फंड मैनेजर, ही वाज व्हाट मेथोडोलॉजी द फंड मैनेजर्स फॉलो to add or subtract shares in the portfolio of the investor?
So fund managers take a call on the companies. You know, they have what they call as an active universe under their coverage. Every AMC has, you know, about 250, 300 or thereabout stocks which are under their active coverage. And they have a pool of stocks which they recommend to all fund managers at an institutional level, at an AMC level, as investment worthy. And every fund manager is mandated to create his or her portfolio of the fund he is managing out of that pool of stocks, and they can decide the weightages. Of course, every fund also has a style guide in terms of, you know, how much maximum exposure to a particular kind of company, a particular business house or a particular sector that they can take, and a fund manager has to operate within those bounds. When it comes to actual buying and selling, they first take a call on you know, how much weightage they want to keep to a particular stock in the portfolio, and then buying and selling is a decision which is more of a dealer's room decision, where they try to time their buying and selling in a way that they are able to minimize the impact cost to the benefit of the investors. This is broadly a framework, you know, but it can vary slightly from fund company to fund company. But you know, beyond that, you know, it's the nuts and bolts of the operational aspects which we need not get into.
हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, प्रेम जी. प्रेम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
नमस्कार
जी. नमस्कार.
म्यूचुअल फंड, अगर हमें म्यूचुअल फंड में जाना हो तो क्या हम बैंकों के थ्रू भी जा सकते हैं? और एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमने अभी एफडीआई ब्रेक कर लिए हैं, तो अपने बैंक में हमने एफडीआई रिन्यू करा दी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम कल जानकारी के लिए कि हमारे बैंक में सीनियर सिटीजन की एफडी की जो मेच्योर रेट जो है 7.5 है, और एसबीआई में और डाकखाने में 7.20 के आसपास बताई जा रही है, अगर हमारा अकाउंट एसबीआई में ना हो तो हमें अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी कि बिना अकाउंट के ही हमारी एफडी बताएगी? म्यूचुअल फंड में जाने के लिए हमें रास्ता बताइए, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में भी जाना चाहते हैं. धन्यवाद.
देखिए, पहली बात तो आप, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं. अधिकतर बैंक्स म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, तो आप बैंक्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं. और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उसी बैंक में हो. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका खाता किसी भी बैंक अकाउंट में हो सकता है. हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड के प्लान्स खरीदेंगे वो रेगुलर प्लान्स होंगे, जिनमें कि बैंक का एक कमीशन एम्बेडेड होता है, तो वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो एक बैंक के थ्रू आप ले रहे हैं और बैंक एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसमें उनका थोड़ा सा कमीशन होता है. तो आप बिल्कुल बैंक्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जहां तक एफडीज की बात है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, आपको जिस बैंक में आपको एफडी करानी है उसमें आपका खाता होना जरूरी होता है.
जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से, एसपी जैन.
जी, स्वागत है.
जी नमस्कार, आ रही है आवाज आपकी?
हाँ जी, ये म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड जिसमें ये क्लेम करते हैं, इसमें गोल्ड भी है, रियल एस्टेट भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, इसके बारे में निवेश करने में आपका क्या एडवाइस?
जी, मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, जैसा कि आपने बताया, आपकी जानकारी ठीक है, कि मल्टी एसेट मतलब डिफरेंट टाइप के एसेट्स. इन फंड्स का मैंडेट होता है कि कम से कम 3 डिफरेंट टाइप की एसेट क्लासेस में इन्हें इन्वेस्ट करना जरूरी होता है. और आमतौर पर देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, वो जो 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है इक्विटी, डेट और गोल्ड. कुछ फंड हैं जो बहुत छोटी छोटी पोजीशन कुछ सिल्वर में लिए हुए हैं, या कुछ रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, वो 2-4% की एलोकेशन है, वो भी बहुत कम फंड्स में. तो मेजॉरिटी ये मल्टी एसेट फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में निवेश करते हैं. कितना तीनों में निवेश करते हैं, ये बहुत वाइड वेराइटी है, अलग अलग फंड्स में आपको इनका एलोकेशन अलग अलग मिलेगा. बहरहाल, मेरा सुझाव है, मैं इन फंड्स को बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड नहीं करता हूं. मेरे हिसाब से हम लोग गोल्ड को एक बहुत अच्छा निवेश नहीं मानते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के रिटर्न निराशाजनक है, और गोल्ड को आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाले एसेट क्लास की लिहाज से देखने से बचें. इक्विटी और डेट अच्छे एसेट क्लास हैं, आप इक्विटी और डेट के फंड्स अलग अलग चुनाव कर सकते हैं.
एंड द नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, दिव्या, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
गुड इवनिंग एवरीवन. आशीष जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे 80C के बहुत सारे फंड्स का 3 ईयर का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, लेट्स से अबाउट 4-5 ईयर्स पहले, तो मुझे अभी इन फंड का क्या करना चाहिए? बिकॉज वो अभी 14% रिटर्न दे रहे हैं ओवर दीज 5 ईयर्स, एंड व्हाट शुड आई डू विद दोस? मेरा आई डोंट नीड दैट मनी, बट उसमें काफी प्रॉफिट दे, तो पैसे का क्या करना चाहिए? शुड आई विथड्रॉ इट आउट फ्रॉम द एटीसी फंड एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स? प्लीज गाइड, थैंक यू.
Divya, what I would suggest is if you don't need that money and if you can keep that money invested for long term, then by all means stay invested in those funds. If you have accumulated too many, then you can of course think about rationalizing the number of funds. But otherwise, I don't see a reason why you should withdraw. You are sitting on handsome profits, and if the India long term growth story remains intact, then there is a great chance that your funds should continue to deliver great returns. And now that they are that the lock-in period is behind you, then you can withdraw any time at will anyways. So you don't have a lock-in. For you, they are like any other diversified equity fund, and therefore you should stay invested.
आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हम अगली खबर पर. विदेशी निवेशकों ने जुलाई के पहले तीन हफ्तों में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 30,772 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 13,573 करोड़ रुपए का निवेश किया. इस महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में कुल निवेश का आंकड़ा 44,345 करोड़ रुपए हो गया. पिछले महीने इक्विटी में यह आंकड़ा 26,565 करोड़ रुपए था. इससे पहले मई में एफपीआई ने 25,586 करोड़ रुपए और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए निकाले थे. कुल मिलाकर इस साल अब तक इक्विटी बाजार में 33,973 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 82,197 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
And before we go to Gaurav ji from Ghaziabad, we'll request you to please be with us. Let's have a look at the weekly performance of gold. Global gold prices rose for the fourth straight week on expectations that the Federal Reserve will cut interest rates in September. Gold gained nearly 1% this week to end at 2,446.80 ounce per dollar on Friday. Earlier, it hit an all-time high of 2,483.60 on Wednesday. However, global silver prices declined this week to end at $29.30 per ounce. Markets are expecting a 98% chance of a Fed rate cut in September. Some experts feel that the global gold price may even touch $3,000 by the end of this year. Earlier this week, Fed Chair Jerome Powell said, "Recent inflation readings add somewhat to confidence that the pace of price increases is returning to the central bank's target in a sustainable fashion, suggesting a turn to rate cuts may not be far off." Warm welcome to you, Gaurav ji. Please ask your question.
Sir, what is your opinion about Kotak Quant Fund? And if we are not invested in any of the quant fund, are we going to miss anything? Because we are invested in heavily into flexi cap, multi cap, etc. Quant fund ke baare mein aapka kya hisab hai aur how is Kotak Quant Fund? Thank you.
Difficult to say. It's a very new fund. Otherwise, I'd say that Kotak has a pretty good equity franchise. They have a good equity team and a good equity research team, and that reflects in the long-term performance of many of the Kotak equity funds. Otherwise, Kotak Quant Fund is a relatively new fund, just about 10-12 months old, and these quant funds otherwise is a recent phenomenon. So we need to give them a little more time. Whether they actually add any novelty over and above the other actively managed funds that you have is a big question mark right now. So I would say that look at these funds with a skepticism. Monitor them, keep a track of them. The other funds of Kotak, like Kotak Equity Opportunities, Kotak FlexiCap, they've been giving good returns. There is no reason why you should look to divest from them, exit from them, and move to a Kotak Quant at this point in time. Keep track and let them build a solid case for them at this point in time.
आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
जी. धन्यवाद.
चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
एंड बिफोर दैट वी'd लाइक टू थैंक ऑल आर लिसनर्स आल्सो फॉर टेकिंग पार्ट सो एंथुजियास्टिकली. द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 44,000 करोड़ रूपीज इन टू द इंडियन कैपिटल मार्केट सो फार इन जुलाई. यूनियन बजट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड यूएस जीडीपी नंबर्स टू ड्राइव स्टॉक मार्केट्स नेक्स्ट वीक. And global gold prices rise for the fourth straight week. Experts feel price may touch $3,000 level by the end of this year. And that's it on this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar.